किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। मेरा पॉडकास्ट किस्सा कहानी बाय निधि बासु फॉलो करें और फॉलो के बगल में बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी हर नई कहानी आपको सबसे पहले सुनने को मिल जाए। अगर हम अपने आसपास देखें तो कपल्स बहुत तरह के होते हैं। पीडीए कपल्स, फॉरएवर इन लव कपल्स, लड़ने वाले कपल्स, लड़ाई से दूर रहने वाले कपल्स, एक दूसरे का जीना मुश्किल करने वाले कपल्स, या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले कपल्स। पर एक बात तय है कि कोई भी रिलेशनशिप स्टैटिक या स्थिर नहीं होती, बदलती रहती है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी ऐसी ही एक कहानी, पेटेंट मेडिसिन, जिसको लिखा था उड़िया में फकीर मोहन सेनापति जी ने। इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया है प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी ने और वाचन है मेरा यानी निधि बासु का। थोड़ा सा फकीर मोहन सेनापति जी के बारे में बताती हूँ। ये एक ऐसे राइटर, पोएट, फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर थे जिन्हें उड़ीसा का व्यास कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उड़िया भाषा की पहचान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया और उड़िया लिटरेचर को डेवलप करने में भी इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो सुनते हैं कहानी पेटेंट मेडिसिन। घर की मालकिन का कठोर आदेश हुआ, रात में तो नहीं ही दिन में भी बाबू घर से बाहर नहीं जा सकते। क्यों जाएंगे, क्या जरूरत है, जो कुछ करना है घर में ही रहकर करें, लिखे पढ़ें, घर के बाहर ना जाएं। बाबू के बहुत अनुनय विनय करने पर आदेश हुआ, अच्छा ठीक है, तो फिर सवेरे 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट दरवाजे के पास सड़क पर टहल सकते हैं, पर बहुत दूर नहीं जा सकते, उतनी ही दूर जाएंगे जिसमें किवाड़ की दरार से दिखने पर दिखाई पड़ते रहें। सुबह के प्रायः 7 बजे होंगे, बाबू चंद्रमणि पट्टनायक दरवाजे के सामने सड़क पर टहल रहे हैं। उन्होंने अचानक देखा कि 400-500 कदम की दूरी पर एक आदमी खड़ा होकर उन्हें बहुत ध्यान से देख रहा है। जैसे ही बाबू की नजर उसके ऊपर पड़ी, उसने हाथ के इशारे से उन्हें बुलाया। बाबू ने खूब गौर से देखा, अरे ये तो वही छोकरा है। भारी खुशी हुई, पास आने के लिए हाथ का इशारा किया, खुद भी दरवाजे की ओर देखते हुए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे ही वे उस छोकरे के पास आए, घर के दरवाजे की ओर मुंह करके अपना बाया हाथ पीछे बढ़ा दिया। उस छोकरे ने बाबू के हाथ में एक चिट्ठी दी और झट लौट गया। बाबू ने चिट्ठी मुट्ठी में दबा ली, उस समय नहीं पढ़ी। दरवाजे के पास आकर पहले देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर चिट्ठी पढ़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन्हें हवा में उड़ा दिया। घर आकर खूब प्यार और स्नेह से पुकारा,
ए जी सुनती हो, जरा बात सुनो तो।
उसके जवाब में घर से एक ऊंची आवाज आई,
ओहो आज भारी प्रेम पुकार है, बात क्या है, देखती हूँ कि आज मेरा भाग्य है, क्या कहते हैं कहिए।
सुनती हो, आज 4 दिन हुए, रोज रात में मेरा सिर चकराता है, पेट भी दुखता है, सारे बदन में दर्द उठता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट।
समझी, और कोई दूसरा प्रेम चढ़ा है, गांजा शराब चिलम तंबाकू के सेवन का ये नतीजा है, नशीले पदार्थों के गुण क्या कम है, सब तरह की बीमारी देह में, इधर 3-3 जगह नौकरी मिली और गई, लोग कितना छी छी करते हैं, नौकरी गई रुपए भी गए, जाने दे, जो होना था सो हो गया, शरीर तो अच्छा हो जाए, 4 महीने एहतियात बरतने से आप थोड़े अच्छे रहे, अब फिर ये कौन सा फसाद खड़ा हो गया है।
अरे नहीं नहीं ये बात नहीं, आज सुबह माधवाचार्य खड़ी रत्न से भेंट हुई थी, उन्होंने मेरी ग्रह दशा देखकर कहा कि मेरी कर्क राशि वृश्चिक राशि द्वारा प्रभावित हो गई है, ये सब उसी का उपद्रव है, थोड़ा पुण्य कार्य करने से सब ठीक हो जाएगा।
खड़ी रत्न कौन सा पुण्य कार्य करने के लिए कह गए हैं, सुनू तो।
मैं 3 दिनों में भुवनेश्वर, खंडगिरी, उदयगिरी में जितने महादेव हैं सभी के दर्शन करूंगा, कुछ रुपए ले जाऊंगा और ब्राह्मणों को दूंगा, वे इससे 100 कुंभ नहीं नहीं 1000 कुंभ की पूजा करेंगे। सब दोष सब ग्रह एक साथ कट जाएंगे, शरीर खूब अच्छा हो जाएगा और नशा फशा खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा।
गृह स्वामिनी के मन में संदेह हुआ, पूछा,
क्या खड़ी रत्न आए थे? मैंने तो नहीं देखा।
नहीं नहीं वे नहीं आए थे, उनका बेटा आया था।
उनका बेटा किस समय आया?
नहीं नहीं अरे नहीं, उन्होंने नौकर के हाथ खबर भेजी है।
गृह स्वामिनी ने बाबू का मुंह भली भांति देखा, मन में सोचा कि ये सब झूठी बात है। 3 दिन कहीं जाकर ये मतवाले लोगों के साथ शराब पियेंगे, नहीं तो तेलंगा बाजार में किसी के द्वार पर जाएंगे। कितनी कठिनाई से इन्हें अच्छे रास्ते पर लाई थी, नजर से दूर जाने पर न जाने क्या कर बैठेंगे।
नहीं नहीं आप भुवनेश्वर फुवनेश्वर कहीं नहीं जा सकेंगे, घर में ही रहें।
हाँ तुमने ठीक ही कहा, 3 दिनों के लिए कहाँ जाऊंगा। अच्छा मैं अभी जाता हूँ, धवलेश्वर महादेव के दर्शन कर शाम तक लौट आऊंगा।
नहीं नहीं वो भी नहीं होगा।
अच्छा ना हुआ ना सही, 1 रुपया तो दे दो, कटक शहर में जितने महादेव हैं उनकी पूजा करके लौट आऊं।
अच्छा मकरा को कहिए कि एक बग्घी बुला लाए, हम दोनों ठाकुर के दर्शन करेंगे पूजा करेंगे।
बाबू लंबी सांस लेकर चले आए, उन्होंने एक जगह बैठकर चिंता की।
अरे शाबाश अच्छी बात है,
उनके मन में एक अच्छी सूझ पैदा हुई।
ए जी सुनती हो, मेरी देह भी तो अच्छी नहीं रहती, इधर उधर घूमने से फिर कहीं और बीमारी ना निकल आए। खड़ी रत्न ने यह भी कहा है कि कहीं ना जाकर महादेव का ध्यान करने से सब रोग छूट जाएंगे।
अच्छा ये ध्यान कैसा है?
क्या कहूँ, ज्योतिष ने कहा है कि इस समय से पूरे 5 पहर रात के 9 बजे तक एक बड़े कंबल से मुंह ढककर लंबा होकर सो रहूं और कोई बात मन में ना रखकर पृथ्वी पर जितने देवतागढ़ हैं सबों का ध्यान करूं।
ऐसा करने से सब ग्रह कट जाएंगे तो?
हाँ हाँ खड़ी रत्न ने कहा है कि ग्रह जड़ मूल से कट जाएगा। उन्होंने एक बात और कही है कि उस समय ठाकुर के नाम से 10 रुपए सिर के नीचे रखे रहूं और 1 महीना बाद देह अच्छी हो जाने पर उन्हीं रुपयों से ठाकुर की पूजा करके वैष्णवों को भोजन दूं।
आज कुछ नहीं खाएंगे क्या?
राम 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 राम, भगवान के ध्यान के समय कहीं कुछ खाया जाता है? दिन भर उपवास रहेगा, बूंद भर पानी भी नहीं पियेंगे।
अच्छा तब कीजिए उपासना।
एक और बात है, उपासना इस घर में नहीं होगी, इसके लिए पवित्र स्थान चाहिए। घर में मांस मछली बनती है ना, घर धुएं से अपवित्र हो गया है, और देव तो नहीं महादेव पार्वती की पूजा करनी है। दरवाजे पर जो छोटा सा कमरा है वही पवित्र है, वहीं एकांत रहेगा। इस बात की सावधानी रखनी है कि उस घर में किसी स्त्री की छाया ना पड़े, आवाज भी सुनाई ना पड़े, नहीं तो ध्यान भंग होगा और फल नहीं मिलेगा। फिर से कहता हूँ सावधान, उस कमरे में किसी स्त्री की छाया ना पड़े और किसी की आवाज भी ना सुनाई पड़े।
गृह स्वामिनी बाबू के कष्ट का ध्यान कर अत्यंत दुखी होकर भीतर आई। उसी समय रसोइये ने आकर पूछा,
माँ आज क्या बनेगा?
आज बाबू का उपवास है, मैं और क्या खाऊंगी, आज रसोई बंद रहेगी।
रसोइया मुस्कुराकर चला गया। मन में अपनी मालकिन के बारे में विचार किया,
हमारी गृह स्वामिनी एक अद्भुत स्त्री हैं, बाबू के प्रति भक्ति की सीमा नहीं,
उनके जरा सा बीमार पड़ जाने पर खुद न खा पी दिन भर सेवा करती रहेगी और क्रोध में आने पर लाठी से झाड़ू से हाथ में जो पड़ जाए उसी से मारने दौड़ेंगी, गंदी गंदी गालियां देंगी। पर जो भी हो गृह स्वामिनी बड़ी अच्छी है, बड़े घर की बेटी है, बड़े लोग की बहू है, मन भी वैसा ही बड़ा है, पर बहुत क्रोधी है, बोली बड़ी कड़ी है।
उधर बाबू ने जाकर मकरा को बाहर बुलाकर बहुत धीरे धीरे मीठे शब्दों में समझाते हुए कहा,
सुन मकरू मेरे लिए एक काम कर, ये कंबल ओढ़कर घर के भीतर किवाड़ लगाकर सो जा, रात गए मैं लौट आऊंगा, उस समय तक सोए रहना। सावधान, घर से बाहर नहीं निकलना।
मकरा तुरंत बोल उठा,
नहीं मालिक, मैं ये नहीं कर सकूंगा। मालकिन गाली देंगी, नाराज होंगी।
बाजी दुष्ट, भूत कहीं का मेरी बात नहीं सुनेगा, जान लो मार डालूंगा।
कुछ देर बाद कहा,
अरे नहीं नहीं मकरू, मैं तो झूठ मूठ की हंसी कर रहा था। देख मकरू, तूने कहा था ना कि तू केंद्रपाड़ा मामा के घर जाएगा, कल जाएगा ना। चल, 4 दिन की छुट्टी दी, और ये ले ये ले ये ले 4 रुपए। 1, 2, 3, 4 ये खर्च करना, और कल तुझे एक नया कुर्ता खरीद कर दूंगा।
मकरा और कुछ बात ना कर कंबल ओढ़ घर के भीतर धरना देकर सो गया। इधर गृह स्वामिनी के मन में चैन नहीं। नहा धोकर अपने सोने के कमरे में एक आसन बिछाकर बैठ गई। जितने ठाकुर देवता मन में आए, बाबू के गृह की शांति के लिए प्रार्थना की। धवलेश्वर महादेव के लिए 1000 कुंभ पंचामृत की मनौती की। हे कटक चंडी माता, काली गली की हे काली देवी, बाबू की देह अच्छी हो जाए तो मैं दोनों को 2 काले पाड़ वाली साड़ी और 2 काला पाठा चढ़ाऊंगी। इसी तरह देवी देवता का स्मरण करते करते दिन के 3 पहर बीत गए। मन में विचार आया कि बाबू जब ध्यान से उठेंगे तो क्या खाएंगे? अन्न तो छुएंगे नहीं, फलाहार करेंगे। उसने पक्के केले, नारियल, छेना, दूध, दही सब सजाकर घर में रख दिए। रह रह कर बाहर छाया देखती, अब सिर्फ 2 घड़ी दिन है। इस बीच तल की धूप ऊपर उठ गई है, और कोई काम बाकी न रहा। घर के भीतर जाती फिर बाहर आती। संध्या हो चली, धीरे धीरे घर के द्वार तक गई। बाबू ने कहा है कि किसी स्त्री की छाया ना पड़े। चारों ओर देखा, नहीं, छाया तो नहीं पड़ती। कहीं मुंह से आवाज ना निकल पड़े, इसलिए अपने आंचल को मुंह में दबा लिया, जरा सा किवाड़ खोल दिया। घर का भीतरी भाग अच्छी तरह नहीं दिखता, अंधेरा है, बाबू ध्यान में है। हाय हाय, बाबू को कितनी पीड़ा होती होगी। हे ठाकुर देवतागण, मेरे बाबू को अच्छा कर दें। क्या सच में देवता हैं? दुखियों की प्रार्थना सुनते हैं? मैंने तो बहुत प्रार्थना की, बाबू का नशा छुड़ा दें। माँ काली भगवती, बाबू का शरीर अच्छा कर दें। 1 काला पाठा और 1 मुर्गी चढ़ाऊंगी। जमीन पर माथा टेक ठाकुर देवता को अनेकों बार प्रणाम किया। इसके बाद ही थोड़ा दरवाजा खोलकर भीतर जैसे ही पैर बढ़ाया, अंधेरे में कंबल ठीक से नहीं दिखा और बाबू के माथे पर पैर पड़ गया। दांतों तले जीभ दबाकर लौट आई और रोने लगी, हाय, मैंने कितना बड़ा अपराध किया। हाथ जोड़कर बाबू से, ठाकुर देवता से अनेक बार क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद धीरे धीरे अच्छी तरह देखभाल कर अंदर गई। बाबू के दोनों पैरों पर 3-3 बार माथा टेक कर प्रणाम किया। प्रणाम करते समय सारा कंबल थर्रा जाता। ऐसा करते समय बाबू के हाथ पैर का पसीना लग गया। हाय हाय, बाबू पसीने से भीग गए हैं। आंचल से पैर पीठ सब अच्छी तरह पोंछ दिया। मुंह पोंछते समय हाथ को मूंछों का स्पर्श नहीं हुआ। मूंछें टटोली, ये क्या, बाबू की मूंछ कहाँ है? 2-3 बार टटोला, मूंछ का पता नहीं। भारी संदेह हुआ, किवाड़ ठीक से खोलकर देखा, कंबल खींच लिया। अत्यंत क्रोध में पीछे हटकर ऊंचे स्वर में कहने लगी,
तुझे डायन खाए, तेरी अकाल मृत्यु हो। क्यों रे मकरा, तू यहाँ क्यों पड़ा है?
मकरा और क्या कहे, चोर की तरह हाथ जोड़कर दीवार से सटकर चुपचाप खड़ा हो गया। गृह स्वामिनी कुछ देर गरज कर थक गईं। इसके बाद मन में सोचा कि हल्ला गुल्ला करना ठीक न होगा। सही बात क्या है, समझना होगा, मकरा के साथ मेल करना होगा। धीरे धीरे मीठी बोली में कहा, अरे अरे मकरू, तुमने कहा था ना कि तुम मामू के घर जाओगे, कल जाओगे ना, ये लो ये 4 रुपए। 1, 2, 3, 4, ये 4 रुपए रास्ते में खर्च करना, खाना खरीद कर खाना, कल तुम्हें अच्छा कपड़ा दूंगी पहनना, अभी हल्ला गुल्ला मत करना, रसोई घर के किसी कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाओ। मकरा ने सोचा कि मालकिन मार डालेंगी, ये क्या, साथ में नगद 4 रुपए और फिर 2-2 कपड़े मिलेंगे। वो मन का आनंद संभाल नहीं पाता। बाबू से मिले 4 रुपए कमर में खोज चुका था, उसमें ये रुपए मिलाकर उसने 2-3 बार गिना। 8 रुपए कमर में खोस रसोई घर के एक कोने में छिप गया और गृहस्वामिनी उसी कमरे के भीतर मकरा के स्थान पर धरना देकर लेट गईं। पहर बीतने पर चंद्रमणि बाबू चुपचाप आकर घर के द्वार के पास पहुंचे। पूरे नशे में हैं, चलते समय पैर लड़खड़ाते हैं, मुंह से अटपटी आवाज आ रही है, जोर से किवाड़ खोल दिया। मकरा ध्यान में है। बाबू ने खुशी में नाचते हुए गाना आरंभ किया, क्या खूब मजेदार, क्या खूब मजेदार, दारू गांजा का जो गुड़ जाने वही है समझदार, वही है समझदार, क्या खूब मजेदार। ओ मकरू, उठ भाई मकरू, शाबाश बेटा मकरा, मेरे दोस्त मकरा, सुन मकरा, इस बार किस साले साली का डर है रे मकरा, आज के मजे की बात क्या कहूँ, तुम्हारी मालकिन ने मुझे 2 महीने से रोक रखा था, मुँह बंद हो गया था, 2 महीने का मजा 1 दिन में वसूल किया। अरे ये क्या आज की बात है, उसके साथ 3 साल की दोस्ती है मेरी, जिस दिन गोपाल बाबू के दरवाजे पर नाचने आई थी उसी दिन से दोस्ती है। आह मजेदार, उसका नाम क्या है जानता है, एक तुम्हारी मालकिन का नाम हुआ सुलोचना, सुल जो पोखर में होता है और चोना आटा। छी छी छी, कितना सुंदर नाम है, उसका नाम है उस मान तारा। वाह वाह, क्या मजेदार नाम है, जीती रहो मेरी उस्मान तारा, जीती रहो, जैसा तुम्हारा नाम वैसा ही गुण, तुझ में तो गुण ही गुण है उस्मान तारा। देख तुम अकराम, उसमें कितनी बुद्धि है, उसकी कितनी मेहरबानी, पुरानी दोस्ती नहीं भूली, कल जैसे ही कटक आई वैसे ही मुझे बुला भेजा, मैं उसे देखकर खजाना पा गया और वो मुझे देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। वहां बैठने के साथ ही ना गांजा भांग का ढेर लग गया, उसने सब ठीक ठाक करके रखा था, शराब भी असली बिलायती नंबर 1। तू अगर 1 गिलास पीता ना तो देखता उसका मजा, हम दोनों ने साथ साथ बोतल खाली कर दी। तुम्हारी मालकिन क्या बनाती है खाने में, पूरी सब्जी और खीर, छी छी ये सब तो बिल्ली खाती है रे, उसने जो तैयार करके रखा था
नमकीन भुना चना और आग में भुनी मछली। शराब के साथ ना पेट भर खाना भी खाया, बहुत मजा आया। तुम्हारी मालकिन को समझा बुझा कर किसी तरह 10 रुपए ले गया था। अब बोलो, उन सब जगह पर कोई खाली हाथ जाता है क्या? जैसे ही उसके हाथ में रुपए दिए, उसने उधर जरा देखकर मुंह फिरा लिया। मैं तो ठहरा होशियार व्यक्ति, तुम्हारी मालकिन की तरह बेवकूफ हूँ क्या? बोलो, मैं समझ गया कि उस्मान तारा को ये पसंद नहीं आया। पसंद कैसे आता बोलो? दिन रात की मजदूरी 100-100 रुपए पाती है, मैं कह आया कि मैं 100 रुपए दूंगा। वो हंसकर बोली, रुपए क्या होंगे, आप आइए। वो रुपए नहीं चाहती, वो चाहती है दिल बहलाना। उस रुपए की क्या कमी है बोलो? फिर भी वचन देने का मतलब रुपया देना है ना? मर्द की बात जान लो, कल कहीं से 100 रुपए लाऊंगा। क्या मजा आएगा। तुम्हारी मालकिन ने रुपए उस बड़े संदूक में रखे, लोहे की एक काटी से संदूक खोल कर अच्छी तरह ठगूंगा। मैंने पहले भी 2-3 बार रुपए लिए, मालकिन का बाप क्या उसका दादा भी नहीं जान सका। संदूक में बहुत रुपये हैं, मेरे हाथ में पड़ जाने से सबको कटक में मौज मस्ती में उड़ा देता। तुम्हारी मालकिन अगर एक ग्लास शराब पी लेती ना, तो समझती कितना मजा आता है। वो आनंद तो समझती है उस्मान तारा, ये तो काठ की मूर्ति है। आज शराब के साथ बहुत सी रसदार चीजें खाई हैं। तुम्हारी मालकिन के बाप साले ने 7 जन्म में नहीं देखा होगा।
गृह स्वामिनी कंबल को 5 हाथ दूर फेंक कर कूद पड़ी।
शराबी तुझे डायन खाए, मेरा बाप तेरा साला है, दिन भर तू कहाँ था? और हाँ, ये उस्मान तारा कौन है?
बाबू तो भय से कांप उठे, जल्द कह दिया,
नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, जरा पेशाब करने गया था। तुम्हारी कसम, तुम्हारा सर छूता हूँ।
गृह स्वामिनी क्रोध में सुदबुद्ध तो खो ही चुकी थी, बोली,
है तूने मेरा माथा छुआ? हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरी मृत्यु चाहता ही है।
घर में एक झाड़ू थी, वही लेकर बाबू पर प्रहार करने लगी, माथे पीठ हाथ पैर पर। बाबू संभल पाए नहीं, भागने लगे, नशे की झोंक में पैर डगमगाने लगे, अंत में गिर पड़े। उस पर भी मूसलाधार बारिश की तरह झाड़ू पड़ती रही। गृह स्वामिनी थक कर घर में जाकर जमीन पर लेट गई, व्याकुल होकर रोने लगी। रोते रोते जितने देवतागण मन में आए, उसने सभी से क्षमा मांगी। हे ठाकुर देवता, मुझे क्षमा करो, मैंने स्वामी को मारा है, बहुत अपराध किया है, मेरा दोष क्षमा करो और मेरे स्वामी को सुबुद्धि दो। रात बीती, गृह स्वामिनी का क्रोध भी शांत हो गया। धीरे धीरे जाकर देखा, बाबू उसी तरह जमीन पर पड़े हैं, नशा उतर गया है, सवेरे की ठंडी हवा लगने से नींद में विभोर हैं, नाक से घर घर की आवाज आ रही है। गृह स्वामिनी ने देखा, हाथ पैर और पीठ सर्वांग झाड़ू की मार से फूल गए हैं, कहीं कहीं तो खून भी बहकर सूख गया है। ये सब देखकर आकुल होकर रोती,
हाय मैंने क्या किया, मैंने स्वामी देवता को झाड़ू से मारा, हाय हाय मेरी क्या दशा होगी, ठाकुर देवता मेरा दोष क्षमा करो।
आंखों से आंसू की धारा बह चली। उसने कटोरी भर तेल लेकर बाबू के समूचे शरीर में लगाया। दोपहर समाप्त होने पर बाबू की नींद टूटी, जरा आंखें खोली तो देखा गृह स्वामिनी पास बैठी हैं, मन में भारी डर समा गया। न जाने एक बार और झाड़ू से मारेगी। अब और नींद तो नहीं, पर आंखें बंद करे पड़े हैं। और एक बार धीरे धीरे देखा, गृह स्वामिनी के मुंह पर क्रोध का चिन्ह तक नहीं है। दोनों आंखों से आंसू की धाराएं बह रही हैं और धीरे धीरे पैर में तेल लगा रही हैं। गृह स्वामिनी समझ गई कि बाबू की नींद टूट गई। चार घड़ा पानी लाकर सोने के स्थान पर रख दिया और बाबू को हाथ के सहारे उठाकर बैठा दिया। सिर और सारे शरीर पर पानी डालकर अच्छी तरह स्नान करा दिया। बाबू का शरीर नशे की खुमारी में जल रहा था। पानी पड़ने से बहुत आराम मालूम हुआ। आंख मूंद कर भगवान की तरह बैठे रहे। गृह स्वामिनी ने कपड़े बदल दिए। रसोईया भात परोस गया। गृह स्वामिनी बहुत कह सुनकर थोड़ा खिला पाई। इसके बाद अच्छी तरह बिछावन बिछाकर बाबू को सुला दिया। कल से गृह स्वामिनी का उपवास है। आज पानी तक का स्पर्श नहीं हुआ। स्वामी के पैर दबा रही है। दिन भर आंखों से आंसू बहते रहे। मन ही मन देवता की प्रार्थना करती रही, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे स्वामी को सुबुद्धि दो। दिन भर पति पत्नी किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। घर में नौकर चाकर सभी चुप रहे। पति पत्नी में से कोई शर्म के मारे एक दूसरे के मुंह को नहीं देख पाते। परस्पर दोनों अपने अपने को दोषी मान पश्चाताप कर रहे हैं। बाबू ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि आज से सब नशा गोरक्त और गोबर के समान है। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, 6 महीने बीत गए। आसपास के लोगों ने देखा, चंद्रमणि बाबू के घर में रोज सुबह शाम जो 2 व्यक्तियों के बीच चक चक सुनाई देती थी, अब सुनाई नहीं देती। दोनों प्राणी एक जगह बैठकर हंस हंस कर बातें करते और पुस्तकें पढ़ते। उत्कल साहित्य, मुकुर, दीपिका आदि समाचार पत्र पढ़ते। बाबू जो हैंड नोट पर बहुत कर्ज ले चुके थे, 1 वर्ष में आधा चुका दिया गया। बाबू अब घर के बाहर नहीं जाते। कहीं से नाच तमाशे के निमंत्रण आने पर, गृह स्वामिनी के लाख कहने और जिद करने पर भी बाहर नहीं जाते। हाँ, पर किसी किसी दिन शाम को दोनों बग्घी में बैठकर शहर घूमाते। शहर के लोग, संगी साथी, ये सब देख सुनकर चकित हो गए। बात क्या है? बाबू के पिता जमींदार श्रीयुक्त श्याम पट्टनायक ने मास्टर रखकर बाबू को पढ़ाया था। वे स्कूल में भी पढ़े थे। इतना पढ़ने से कुछ ना हुआ। कुसंगति में पढ़कर भारी नशाखोर हो गए। समय बुरे विचार में कटने लगा। कुछ ही दिनों में चरित्र भ्रष्ट हो गए। रात भर बुरी जगहों पर घूमते, शराबी मतवाले लोगों की संगति में रहते। 5 अच्छे व्यक्तियों ने कहा, पुत्र का विवाह कर देने से चरित्र सुधर जाएगा। रामकृष्ण महंती की पुत्री परम सुंदरी, खूब गुणवती, जमींदार बाबू उसे ही बहू बनाकर घर ले आए। तब भी पुत्र नहीं सुधरा। घर का सामान और नगद रुपए चुरा कर उड़ाता। 5 रुपए लेकर 20 रुपए का हैंड नोट लिख देता। इधर घर की बात या जमींदारी की बात कुछ भी ना समझता। जमींदार बाबू ने जब देखा कि ये और नहीं सुधरेगा, ये कुलांगार घर की सारी संपत्ति उड़ा देगा, तो उन्होंने बहू श्रीमती सुलोचना देवी के नाम से सारी चलाचल संपत्ति लिख दी। पिता ने जितना भी समझाया, ससुर ने जितना भी कहा, किसी का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। अचानक रात भर में इतने अच्छे कैसे हो गए? गोपी बाबू विनोदी प्रकृति के ठहरे। हंसते हंसते कहा कि उस दिन रात में गृह स्वामिनी ने जो झाड़ू की लगातार वर्षा की थी, उसी का ये फल है। नशीले पदार्थों का सेवन और बुरे विचार आदि जितने भी ऐसे रोग हैं, सब झाड़ू प्रहार की दवा से छूट जाते हैं। श्याम बाबू ने हंसते हुए कहा, वैद्य शास्त्र, डॉक्टरी किताब आदि में तो कहीं इस रोग का ये निदान नहीं बताया गया है। गोपी बाबू ने कहा।
अरे आप नहीं समझे, यही तो गृह स्वामिनी का आविष्कार है, पेटेंट मेडिसिन।
दुष्कर्मों के कारण यदि किसी सुंदरी के वे अर्थात पतिदेव इस प्रकार रोगग्रस्त हो जाएं, तो लेखक का ये सविनय निवेदन है कि ये पेटेंट मेडिसिन एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखें। आप सुन रहे थे मूल उड़िया कहानी पेटेंट मेडिसिन, जिसके लेखक हैं फकीर मोहन सेनापति जी, हिंदी अनुवाद है प्रोफेसर कपिलेश्वर प्रसाद जी का, वाचन था मेरा यानी निधि बासु का।
आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के पॉडकास्ट फॉलो करना न भूलें।